சாந்தானம் கனானம் அச்சலானம் துருவானம் நிச்சானம் புதஸ்வரூபானம் ஞானஸ்வரூபானம் ஆனந்தியானம் ஆனந்தியானம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. பிரம்ம சபை கி உபாசனா கரே, பிரம்ம விஷ்ணு மகேஷ் சபு கி உபாசனா கரே, ஐசா ஜோ சேவா சிவ ஜோ ஹே சுனியா, ஜிஸ்கே ஆப்னே கங்கா மே ஆப்னே ஜடா கே பீச் மே கங்கா நிவாஸ் கரே ஹே, அர் வோ சிவ ஹே ஜி கோ ஆப்னே உன்னே ஜி ஆப்கோ வாஸ் கரே, கைலாஷ் கே வா வாஸ் கரே ஹே, அர் பெங்கே ஜோ லோக் ஹே ஜி கோ சிவ லோக் ஹே, வோ சப் கே ஊபர் சிவ லோக் ஹே, அர் சப் ஜியா உஸ்கே நீச்சா ख्याल करो स्तुतियों ने, सूर्य की स्तुति ने पढ़ो, स्वत ने पढ़ो न पढ़ो, ब्रह्म की स्तुति न पढ़ो, शिव की स्तुति न पढ़ो, विष्णु की स्तुति न पढ़ो, ब्रह्म की स्तुति के समान ही श्रीमान की स्तुति बने. बोलता बोलता सूक्ष्म जीव मां चले गए,
सीधा अंदर चले गए, बिल्कुल निकाल
कर रहे हो के रूप के माँ. या इसी प्रकार से जो विष्णु को जो भगत है बहन है, समझते हैं कि विष्णु से बढ़कर कोई चीज नहीं,
रोड वाला
का कोई नहीं. राम को भक्तों को समझते राम से बढ़कर कोई नहीं. तुलसीदास जी देखो, तुलसीदास जी जो है शोभना के पास के बीच के माँ है ना, मनु शत्रुपा है सो आपने तपस्या करी, और विष्णु भगवान आकर तपस्या करी, नहीं मैं तो राम रूप में जाऊंगा. तो मैं दिखा रहा कि राम है जी को सबसे बढ़कर के ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक प्रकार से राम का ही अवतार है, राम ही अवतार ही है. तो मैंने सबसे बढ़कर राम है. इसी प्रकार से की समझो कि मैंने जो जिके देवता केवल बगुल नाम नाम रह गयो, और सारी बात तो ब्रह्म की उसमें घटा दी. तो इसी प्रकार से सूर्य का जो उपासक है, जिसका सूर्य के भीतर में ही सब गुण, सब गुण संपन्न सूर्य नहीं मान लिये, सूर्य भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होया. अपने सूर्य स्त्रोत्रों में देख लो, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्मा और तुम ही विष्णु और तुम ही शिव और तुम ही सब हो, सूर्य नहीं कवे. या जो देवी भागवत है उसके बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अपने देवी इससे उत्पन्न हुआ है, देवी ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करा. ब्रह्मा विष्णु महेश जो सब देवी क्या शक्ति, शक्ति ने ब्रह्म को रूप दे दियो. तो ब्रह्म का जो लक्षण, जो ब्रह्म का सर्वोपरि भाव है, सब उसमें देवी में शक्ति में सब समावेश कर दिया. या श्री रामकृष्ण परमहंस के वे काली 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 तारा तारा, तो वह तारा काली के ब्रह्म को नाम काला तारी है, और वह तारा काली देवी और तारा और कुछ नहीं, देवी के नाम से ही वह ब्रह्म रूप देकर मैंने उपासना करे. तो इस प्रकार से थी समझो कि वेद व्यास जी महाराज अलग अलग जो पुराण का जो उपासक था, जिसका मैंने भी शीघ्रता में मैंने पहुंचाया, मैंने ब्रह्म रूपता देकर की वाह वाह वाह. फिर जो आपने गणेश की उपासना करो तो गणेश से बड़ कोई है ही, तुम जो देवी की उपासना करे तो देवी तो सर्वोपरि है, देवी से तो सारी संसार की उत्पत्ति हुई है. इसी प्रकार से थी ये जो आपने व्रत जो है, उपवास जो है, तीर्थ जो है, अभी इसके मन कोई आदमी कहिए हमारे समझ में नहीं आए, जिस वक्त के जिसके मन समझो काशी की महिमा है तो बोलो काशी काशी सर्वोपरि, कुरुक्षेत्र किया जो कुरुक्षेत्र बड़ को याद ही नहीं, कुछ कर किया तो कुछ कर सबसे बढ़ करके, प्रयाग जी किया तो मैंने सबसे बढ़ करके. तो मतलब क्या है कि प्रयाग को सबसे बढ़ करके मान करके जय की पूजा करने से तो मैंने पूर्ण लाभ हुए वो, और वो एक प्रकार से नाना प्रकार का भेद मान करके किसी ने तो सर्वोपरि माना ना. तो इस बात से जो प्रयाग को भगत है उससे प्रयाग से बढ़कर कोई चीज नहीं, पुष्कर को भगत है बन के लिए पुष्कर से बढ़कर कोई चीज नहीं, कुरुक्षेत्र को सबसे बढ़कर माने तो बन के लिए कुरुक्षेत्र सर्वस्व है, गंगा ने सबसे बढ़कर माने तो सबसे बढ़कर गंगा ही है. जो जमुना में सर्वसमृद्ध माने तो सर्वसमृद्ध की जमुना ही उसके लिए है। इसी प्रकार से थी समझो कि कोई आदमी तो अपने तुलसीदास जी ने बोला यह बड़े ऊंचे दर्जे का भक्त रहा, कोई बोला कि सूरदास जी सर्वसमृद्ध के भक्त रहा, कोई बोला आपने सुखदेव जी हुआ, कोई बोला कि आपने नारद जी सर्वसमृद्ध हुआ। तो इस तरह से जो भगवान के जो भक्त है उनके बीच के वहां भी अपने मानता के अनुसार उसको सर्वोपरि मान लिया। तो सर्वोपरि मनाना इसलिए ही है कि वो एक निष्ठ हो जावे और कोई प्रयोजन नहीं है। स्त्री अपने पति को ईश्वर मानकर के उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति कर ले है, तो फिर कोई शिव ने या विष्णु ने या सूर्य ने या गणेश ने या भगवती देवी ने साक्षात ईश्वर मान कर बल्कि उपासना करके परमात्मा ने प्राप्त हो जाए उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको एक चतुराई की बात बतलाई जाती है, यदि ये विद्या है कि जैसे कोई भाई से कोई बात पूछनी है वो बोल दे तो समझ में आई जाती है, वो नहीं भी बोले तो अपने प्रश्न करके भी उसको पूछ सकते हैं और उसका भाव जानने में आ सकता है। जैसे अपने 18 वर्ष का लड़का है, अपने उसके विवाह करने की सब लोग घर वाले चेष्टा कर रहे हैं, उस लड़के की इच्छा विवाह करने के विषय में है या नहीं है यह बात जाननी है तो उसे लड़के के सम्मुख ऐसा वातावरण या जिक्र किया जाए, पूछा जाए अमुक गांव में और अमुक भाई के एक लड़की है, ऐसी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, तो उसके साथ के वहां तेरे विवाह के विषय में बातचीत कर रहे हैं और मंत्र को भी नहीं फागुन में विवाह की बात चल रही है, तो ये शब्द उसको सुना सुनाने के बाद भी उसने विरोध किया कि नहीं अभी मेरे विवाह मत करो, तो समझ में आगे को नहीं शिक्षा और मौन हो गया तो सब बात उसको स्वीकार होगी, समझ कर दो मुद्दा दे दो, बोले तब भी और नहीं बोले तब भी। आप बैठे हैं मैं बैठा हूं, उन्होंने कहा कि स्वर्गासुर में घाट बना रहे हैं, 5,000 रुपया हमने अपने कौन का कष्ट का लिखा है, 300 रुपया भाई परमानंद का मांडा है, हमारा 2,000 रुपया जाना कष्ट से लिख दिया है और महाराज साहब का 2,000 रुपया लिख दिया, कोई नहीं लिख तो समझे ठीक है, यदि एक प्रकार से विरोध कर गए तो समझे इसका बात जो वो कहते कि वोट नहीं कह रहे ठीक है, ये भी तो बात है, या तो हाँ या ना या चुप, तो एक प्रकार से अपनी तब से उसको बात सुना दी तो वो चाहे बोले चाहे नहीं। इसी प्रकार से हरेक विषय के बीच के वहां किसी व्यक्ति से कोई बात पूछनी हो वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, उसके हाव भाव से कटाक्ष से उसकी चेष्टा से और उसके चेहरे के भाव से इस समझ में आ जाता है कि ठीक है इस विषय में इसकी क्या सम्मति है, बोले तो और नहीं बोले। यह एक चतुर्थाई की बात आपको बताई। इसी प्रकार की बात यदि भगवान से पूछनी हो, जैसे सब सामने बैठे हैं ना तो उनसे पूछने में तो कोई कठिनता नहीं आई, तो भगवान तो आप आंख के सामने नहीं है, इस विषय में भगवान की क्या राय है, कोई भी बात हम पूछें कि वर्तमान के बीच के वहां गौ के ऊपर संकट आ रहा है, तो इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, भगवान की हम सम्मति ले रहे तो कैसे नहीं। हम मन में विचार करने लगे, ऐसा एक लेख निकाले कि वोट किसको देना चाहिए, जो गवां का सेवक है और गोवध संसार से बंद कराना चाहे उनको देना चाहिए, और किसको देना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, परलोक को मानने वाला है, उसको वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए, भारतवर्ष के वहां वोट की बात चल रही है, तो जो भारत का जो हित चाहे, जिससे वास्तु के भीतर के बीच के में भारतवर्षी जो है ये उन्नति को प्राप्त है, असली जो उन्नति है, अध्यात्म विषय की जो उन्नति है, परमार्थ विषय की जो उन्नति है, अलौकिक जो उन्नति है, इस विषय के बीच के वहां जो तत्पुर है उनको वोट देना चाहिए। देना किसको नहीं चाहिए, इसके जो विपरीत है, जो स्वार्थी आदमी है, घुसखोर है और मान बढ़ाई के चिंकर हैं, अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए दूसरे का मान नुकसान कर देता है, ऐसे पुरुषों को वोट नहीं देना चाहिए। जीत हृदय के वहां अच्छा भाव है, लोक सेवा का भाव है, और अपने तन मन धन को जिन्होंने लोक सेवा के वास्ते लगा दिया है, ऐसे जो त्यागी है, ऐसे पुरुषों को वोट देना चाहिए। ये एक लेख इस प्रकार का लिखकर तैयार किया, और तैयार करके देखे अब भगवान की सम्मति ले ली, तुम्हारी क्या राय है। अपने हृदय के मां एक प्रकार से वो सब बात भगवान के चरणों में रख पूछा कि हम तो किसी जाने नहीं, तुम जाने रघुना, हम तो प्रभु किसी जानते नहीं, आप जानो। इस विषय के बीच के मां अब क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भगवान से हम पूछ रहे हैं कि भगवान मैंने पुण्य के रूप में आपने अब कह रहे हैं कि इसका थोड़ा संशोधन कर, अब संशोधन करें तो फिर पढ़ने की आवश्यकता रही, फिर शुरू से पढ़ने लगी, एक पंक्ति पढ़ी, दो पंक्ति पढ़ी, जो पढ़ते गए और जैसे वो पंक्ति अड़ गई, इस में यूं गई ठीक है, पढ़ते गए आगे दूसरा प्रकरण आया, बोले इस विषय में यूं कर, आगे प्रकरण आया बोले इसको काट, फिर अपने सिद्ध हृदय के वहां जो भगवान की तरफ से प्रेरणा है, जो फुरना है, एक प्रकार से उसको रखते गए और उसका संशोधन करके और उसको उसे छपा दिया। भगवान की स्मृति अपने मिल गए, क्यों भगवान स्मृति हृदय में है, महात्मा गुड़ा के सर्वभूता से सारे भूतों के हृदय में सबकी आत्मा रूप से मस्तित हूँ, तो अपनी जो आत्मा है उसमें भगवान सिद्ध है या आत्मा परमात्मा है मान करके के उसे सलाह ले लें, सलाह देने के बाद हर वक्त तैयार ही रहे, सलाह किस प्रकार से लेनी चाहिए कि निष्काम भाव से, अपने कोई कामना में लेकर के नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं, संसार का हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान से पूछा जाता है, और कोई बात भगवान उसमें जोड़ने के लिए कह दिए कि इसमें ये कमी है तो और जोड़ दो, तो इस प्रकार से अपने उस व्याख्यान को बना ले और बना करके प्रकाशित करते हैं, तुम्हें सम्मति आपने मिलेगी। भगवान तीन प्रकार से सम्मति देते हैं, शास्त्र के द्वारा, सिद्ध हृदय के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा, या जिन्हें अपने विश्वास है कि यह महापुरुष है उनसे जाकर सलाह ले लें, तो महापुरुष का हृदय शुद्ध है, उनके हृदय में परिवेश भगवान पालन से है ही, और वे जिस प्रकार से कि आपने सलाह दे रहे तो सलाह ठीक है, या शास्त्र से मिला ले हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, और इसे जो हमारे को सलाह मिले वो भगवान की सलाह समझ करके अपने काम से आगे को बढ़ाए। तो ये एक विषय की बात थी, और भगवान से या माताओं से या शास्त्र से सलाह लेने की बात थी। इसी प्रकार से थी निष्काम तरीके की एक बात आपको कही जाती है कि निर्भीक होकर के और कामना से रहित होकर के और अहंकार से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के और आसक्ति से रहित होकर के हम कोई भी क्रिया करें वो हमारी क्रिया सर्वमान्य होगी, संसार के लिए कल्याणकारक होगी और वो सर्वोत्तम समझी जाएगी। इस प्रकार की कोई भी हम क्रिया करें तो हमारे को पाप छू नहीं सकेगा, वो क्रिया हमारी आत्मा के उद्धार के वहां सहायक होगी, कल्याणकारक होगी। और इसी कारण समझो कि उत्तम दर्जे का कर्मयोग है। कर्मयोग के द्वारा भी ऐसी आपने चेष्टा होगी और सांख्य के द्वारा भी क्रिया ऐसी होगी, मानता भिन्न भिन्न होकर के ही नतीजा और परिणाम सबका एक ही होगा। इसी प्रकार से जितनी प्रकार के मैंने पहले जो साधकों की बात कही, साधन की बात कही, इस देह की बात कही, इन सबका नतीजा परिणाम भी आखिर में जाकर के एक ही होगा। और वो एक होगा वो अनेक व्यक्ति होगा। तो प्रथम जो उपासक है अपने उपासना के अनुसार ही अपने उपास देव को प्राप्त करें, चाहे किसी भी देवता का उपासक हो, आगे जाकर के और शिव की जो एकता हो जाती है, शिव का एक ही जो फल है वो समझो कि वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, जो इसको प्राप्त होता है वो जानता है। समझाने के लिए ये कहना है, वास्तविक के बीच के वहां कोई शब्द कहना बनता ही नहीं। तो इसलिए कोई मनी से किसी देवता की उपासना करे, किसी मार्ग से चले, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, वो प्राप्ति स्थान एक ही है। जो सांख्य प्राप्त स्थान तब योगी अपनी गम्य थे, लेकिन सांख्यों के योग यह पश्चिम से पश्चिम सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वो स्थान प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई अमेरिका जाने वाला चाहे पूर्वी पूर्व चले अमेरिका जा पहुंचेगा, और चाहे कोई पश्चिमी पश्चिम चले अमेरिका जा पहुंचेगा, चाहे समुद्र यात्रा से चले और चाहे आकाश यात्रा से चले, दोनों का लक्ष्य एक है, एक स्थान में दोनों पहुंचे। जन का लक्ष्य यही है कि सर्वोत्तम जो चीज है वो हमारे को मिले। तो सर्वोत्तम जो चीज है उसके ये सब नाम है, कोई इसको मुक्ति कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परम पद कहते हैं, कोई परम धाम कहते हैं, कोई अमृत कहते हैं, अनेक इसके नाम है। चीज एक मार्ग माना है, किंतु सिद्धांत माना नहीं हो सकता। सिद्धांत तो एक ही है, वो है सो वास्तविक है, किंतु मार्ग को सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। क्यों? तो वो एक निष्ठ भक्त सुन लिया जाता है, और एक निष्ठ होने से कार्य की सिद्धि सिद्ध होती है। नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण हरेक माता बहन और भाई लोग जिस बात को अपनी बुद्धि से उत्तम समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, उसके अनुसार यदि कार्य करे तो शीघ्र ही लोगों को कल्याण हो सके। मनुष्य जिस चीज को सबसे बढ़कर समझता है, जैसे उत्तम आचरण है, उत्तम गुण है, ईश्वर की भक्ति है, ज्ञान वैराग्य सदाचार है, इनको उत्तम समझता है और फिर इसका यदि पालन करे तो शीघ्र उद्धार हो जाए। और जिस बात को खराब समझता है कि झूठ कपड़े चोरी आदि जो दुराचार है, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो गुण है, इनका त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। और जो आलस निद्रा प्रमाद भोग पाप दुर्व्यसन आदि जो खराब बातें हैं जिनका त्यागना अपने बुद्धि में विवेक में आता है कि यह त्याग करने योग्य है, इसका त्याग करना बहुत ही लाभदायक है। सब दुर्गम दुराचार और दुर्गुणों को खराब समझ करके के फिर इसका नहीं त्याग करना है, ये अपने आप का अपने आपके द्वारा पतन करना है। हम जब समझ गए ये बुरी बात है, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदरा पीना, मांस खाना, आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, ये सब जो बुरी बात है, या काम करो इत्यादि जो बुरी बात है, उसको खतरनाक समझ करके फिर उसका त्याग नहीं करना, ये वास्तविक में जानबूझ करके अपने आपका पतन करना है। और जो अच्छी बात है उसका सेवन नहीं करना, यह करना, दान देना, तप करना, जैसे ईश्वर का भजन ध्यान सत्संग करना, परोपकार करना, ये सब अच्छी बात है, ये समझ करके भी नहीं करना है, ये मूर्खता है और अपने लिए दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है और महानहानि कर है। ये भी एक प्रकार से अपने आप का पतन ही करना है। ईश्वर ने हम लोगों को विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उस विवेक बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जिस चीज को हम श्रेष्ठ समझे उसको काम में लाएं, अपना बुद्धि विवेक और इनको आदर देना है। अब इसका ठीक उपयोग नहीं करना, समझ करके ठीक उपयोग नहीं करना अपने विवेक और बुद्धि का अनादर है, उससे उसका पतन हो जाता है। गृह जात मनात्मा नहीं, भगवान ने गीता की 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अपने आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना चाहिए। ये उद्धार करना है कि जिसको हम शास्त्र दृष्टि से, अपने विवेक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जिस काम को अच्छा समझें उसको तत्परता के साथ करें, जो अपने आप के द्वारा अपने आप का कल्याण करना है, जिसको बुरा समझे उसका त्याग करना, ये भी अपने आप का कल्याण करना है, अपने आप के द्वारा अपने आप का। परमात्मा की प्राप्ति पापी से पापी को और मूर्ख से मूर्ख को सौज्य हो सकता है, उसके लिए कोई विशेष समय नहीं लगता और सही दिन हो रहा है, यह आश्चर्य की बात है। देखते देखते बहुत से आदमी अपने मर रहे और यमलोक को जा रहे हैं, क्योंकि झारण आदमियों को रोज रोज यमलोक को जाते देख करके भी अपनी जो मृत्यु नजदीक नहीं दिखती। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रति कहा कि ये आश्चर्य की बात है, महाभारत के वन पर्व के अंत में। इसी प्रकार से ये भी आश्चर्य की बात है, जिसको हम अपने लिए कल्याणकारक समझते हैं, बहुत अच्छी बात समझते हैं, जो हमारे लिए